धौला पुस्तक 13 लेक्चर नंबर 15 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं मुनिसुवयजिनवसहं सुवयमुनिवसः सन्तुं नमिं कम्माणुयोयमिणमो वोच्छमणेयत्थगन्थगयम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और इस 13वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 117 पर हम आ गए, 117। हाँ, 117। ये भी कर्म अनुयोग द्वार की अपनी चर्चा चल रही है, और हम उसका जो अलग अलग कर्म है, हमने देखे ना 6 प्रकार के कर्मों की चर्चा है मार्गणाओं में, तो उसका काल देख रहे हैं। काल का अर्थ है कि वो लगातार कितने काल तक, एक जीव की अपेक्षा लगातार उसका काल जघन्य और उत्कृष्ट कितना हो सकता है, उसकी चर्चा है यहाँ पर। हमने अलग अलग मार्गणा में देखते हुए अभी काय मार्गणा की बात यहाँ शुरू होती है। पहले में पहले काय मार्गणा की अपेक्षा भेद कितने हैं? 6 भेद, स्थावर काय में 5 और एक सरस काय। तो कहते हैं काय मार्गणा के अनुवाद से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, एक कॉमा लगाना यहाँ पर, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक। सूक्ष्म वनस्पति कायिक कहने से निगोधी आते हैं, और सूक्ष्म निगोध जीवों के, यानी उन्हीं को निगोध भी कह दिया, उन्हीं को वनस्पति कायिक भी कह दिया। प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? तो कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। 118 पृष्ठ पर आए हम। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है। एक क्षुद्र भव, यानी वो अन्य कायिकों में से आया और एक भव करके अन्य कायिकों में उत्पन्न हुआ। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि एक एक कायिक में रहने का काल असंख्यात लोक है। तो सूक्ष्म निगोध में भी असंख्यात लोक है, क्योंकि सूक्ष्म एक इंद्रियों का काल ही असंख्यात लोक है। सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म बादर ऐसा अगर करता है निगोध, तो वो 2.5 पुद्गल परावर्तन वो होगा। ख्याल में आई बात? एक ही है, परंतु तो कथन की अपेक्षा अलग है। वनस्पति कायिक का भेद करके बताया तो सूक्ष्म वनस्पति कायिक, और ऐसा कहते सूक्ष्म निगोध, ये सूक्ष्म निगोध है, सूक्ष्म साधारण वनस्पति कायिक ही है। तो कहते हैं कि एक क्षुद्र भव और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है, क्योंकि सूक्ष्म की बात है, सभी सूक्ष्म ले लिए, क्योंकि हमने देखा था ना। हाँ, सूक्ष्म में पर्याप्त में अपर्याप्त मिलकर असंख्यात लोक होता है, एक एक कायिक में भी असंख्यात लोक होता है, और अकेला सूक्ष्म के पांचों ही सूक्ष्म मिलकर भी असंख्यात लोक होता है काल, यह हमने देखा था। अंतर्मूर्त होता है बादर पृथ्वी का, अभी बादर की बात है, बादर पृथ्वी कायिक, बादर कहने से वो पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए, बादर जल कायिक, बादर अग्नि कायिक, बादर वायु कायिक, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर, और बादर निगोद प्रतिष्ठित जीव। निगोद प्रतिष्ठित कहने से सप्रतिष्ठित प्रत्येक, जिसको हम कहेंगे प्रयोग कर्म व समवदान कर्म का, सब जगह विधा ही किया है उन्होंने, समवदान कर्म का कितना काल है, तो कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। केवल वो सांतर मार्गना होगी, वही हमको देखना है, सोचना है, अन्यथा सब में वो तो सर्वदा नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है। क्योंकि बादर इतना ही कहा है, तो बादर कहने से पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आए, तो उसमें कम से कम रहने का काल है एक क्षुद्र भव, और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। कर्म कहने से, कर्म स्थिति कहने से सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर, क्योंकि कर्म इन जनरल लेना है, तो कर्म स्थिति प्रमाण हरेक के बादर में रहने का और बादर प्रत्येक में रहने का काल हम कितना होगा, संख्या 1000 वर्ष। हाँ। और बादर एक इंद्रियों में, भूल गए, अंगुल का संख्या तो अभी बादर एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय कहने से पांचों का एक आ गए उसके अंदर। अभी देखते हैं उन्हीं पर्याप्त जीवों के, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, अलग अलग प्रयोग कर्म व समवदान कर्म का, वो कर्म में रफार रह गया है, कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि बादर पर्याप्त जीव है ना, अपर्याप्त नहीं थे, अपर्याप्त में हम एक क्षुद्र भव लेते हैं और पर्याप्तों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है, ये समझ में आ रही ना, अभी वो बार बार पढ़ने से ख्याल में आ जाएगा, ध्यान में रह जाएगा, भले भूल जाए पर जब पढ़ रहे तब ख्याल में आना चाहिए। अभी उन्हीं अपर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, बादर जल का एक अपर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, तो कहते नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण, क्योंकि अपर्याप्त जीव है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, हमने देखा था एक एक कायिक में भी देखना है तो उसमें 6012 भव होते हैं, देखे ना, वो मिलकर भी अंतर्मूर्त ही होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म अपर्याप्तकों के जानना चाहिए, यानी उसमें भी जघन्य काल क्षुद्र भव और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होगा, सूक्ष्म पर्याप्तकों के भी इसी प्रकार ही जानना चाहिए। पर्याप्तकों में भी कथन ऐसा ही होगा, विशेषता इतनी है कि इनके एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है, देखो, क्योंकि सूक्ष्म के भी पर्याप्त जीव लिए है तो जघन्य काल अंतर्मूर्त। अब इनमें से ऊपर वनस्पति कायकों को छोड़ा था, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति को लिया था पर साधारण को छोड़ा था, वनस्पति कायिक जीवों के, केवल वनस्पति कायिक इतना ही कह दिया, तो उसमें सभी आ गए, बादर भी, सूक्ष्म भी, साधारण भी, प्रत्येक भी, तो वनस्पति कायिक जीवों के प्रयोग कर्म व समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण, यानी एक लब्धि पर्याप्त का भव, और उत्कृष्ट अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। जो हम एक इंद्रियों में देखते हैं ना, वो अकेले वनस्पति कायिक में भी इतना काल लगता है, यानी वो सूक्ष्म बादर वो पर्याप्त पर्याप्त सब मिलकर। यानी वनस्पति कायिक इन जनरल लिया, अकेला निगोद लेंगे तो ढाई पुद्गल परिवर्तन होता है। निगोद जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण, यानी अपर्याप्त निगोद, और उत्कृष्ट काल अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये ख्याल में, वनस्पति कायिक कहेंगे तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, या केंद्रियों के भी वही बात है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। और अकेले निगोद कहेंगे तो ढाई पुद्गल परावर्तन। बांदर निगोद जीवों के, जैसे ऊपर बांदर पृथ्वी का एक वगैरह कहा था वैसा, बांदर निगोद जीवों के प्रयोग कर्म व समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण, यानी बादर निगोद में अपर्याप्त और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। देखो 118 पेज पर देख लो, बादर कहने से इन जनरल है, इसीलिए जघन्य काल अपर्याप्तों का लिया और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। जो बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर वायु का एक, सबके लिए कर्म स्थिति प्रमाण ही था, इसलिए यहाँ पर बादर निगोद के लिए भी कर्म स्थिति प्रमाण है। पर बादर वनस्पति का एक ऐसा कहेंगे तो ऐसा नहीं लिया, बादर निगोद लिया, उन्हीं के पर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, यानी केवल पर्याप्त लिए, बादर निगोद पर्याप्त। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है, ये महत्व की बात है। देखो अन्य बादर कायिकों में क्या देखा था हमने, उत्कृष्ट काल बादर पर्याप्तों का, उत्कृष्ट काल पर्याप्तों का पूछ रही मैं, संख्या था 1000 वर्ष, यानी बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, इनके संख्या 1000 वर्ष। इवन वनस्पति कायिकों के भी देखा था हमने, कौन से, प्रत्येक वनस्पति के। अब यहाँ निगोद में पर्याप्त जीव ले रहे हैं, निगोद बादर पर्याप्त जीव, तो निगोद की आयु अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगी, ख्याल में आई बात ये? हमने देखा था ना वनस्पति कायिक में 10000 वर्ष की भी आयु होती है एक भव की, तो अनेक भव मिलकर असंख्यात 1000 वर्ष कह दिए। वायु कायिक की कितनी देखी थी याद, वायुकायिक की 3 ने, अग्निकायिक की 3 दिन,
7000
नहीं 3000 वर्ष वायुकायिक के, 7000 वर्ष तो हमने इसकी देखी थी ना। देखो पृथ्वी कायिक की 22000 वर्ष देखिए, और जलकायिक की, वनस्पति की तो 10000 वर्ष, बादर जलकायिक की कितनी देखी थी याद है,
7000
उसी की होगी, अग्निकायिक की तो 3 दिन रात होती, नहीं वायु कायिक की 3000 वर्ष, 3000 वर्ष की, 3 दिन की, 3000 वर्ष। यहाँ बाप उतर रहे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। एक ही जीव, अभी ये वनस्पति कायिक की भी देख रहे हैं ना, पृथ्वी कायिक की, पृथ्वी का एक 22000 वर्ष हम देख रहे हैं। ये तो केवल ज्ञानी ने जाना है, हम उसमें कुछ अनुमान भी नहीं लगा सकते है ना। ये वायु का एक बहुत बार नहीं आता है 3000 वर्ष, बाकी पृथ्वी का एक हमेशा वो मैक्सिमम आयु एक ही दिन के लेने तो 22000 वो याद रहता है। 3000 मुझे इसलिए याद है कि परसों कल परसों वो महाबंध का मैं चेक कर रही हूँ ना, उसमें आई थी बात 3000 है। हाँ 3000। अभी यहाँ देखते हम 119 पेज पर थे हम, निगोद में हमने देखा था कि पर्याप्तों का भी उत्कृष्ट आयु भी अंतर्मूर्त ही होगी, बादर निगोद पर्याप्तों की, केवल बादर निगोद कहेंगे तो कर्मस्थिति। अभी उन्हीं के अपर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल वो ध दिख रहा है क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है जैसे अन्य अपर्याप्तों में देखते हम वैसा ही। ये पांच कायिकों की बात हो गई। अब त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवों के मनीष अब इनमें कौन कौन से कर्म हो गए। त्रसों में सब हो गए ना। अरिहंत भी है कि नहीं उसके अंदर। हाँ तो सभी छह हो गए। अभी त्रसों में रहने की जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति देखे। त्रस इन जनरल कहेंगे तो एक लब्धि अपर्याप्त कब हो लेना। देखो त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समुदान कर्म का कितना काल है। नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भवग्रहण प्रमाण और अंतर्मूर्त क्योंकि उन्होंने दोनों की एट ए टाइम कहना शुरू किया त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त। तो पर्याप्तों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त होती है। हाँ तथा उत्कृष्ट काल यानी त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल लेना है। इसको पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 2000 सागर। आवाज किसकी आ रही है ना। मैं अभी किया। उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 2000 सागर और पूरा 2000 सागर। हाँ पूरा 2000 सागर किस लिए। पर्याप्त त्रस पर्याप्तों के लिए। शेष पदों का काल ओघ के समान है। अब ओघ के समान हम एक एक को पूछेंगे। अधक कर्म का काल कितना है। पूरा लोक तो क्षेत्र हुआ असंख्यात लोक प्रमाण एक समय से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण क्योंकि जघन्य उत्कृष्ट दोनों बताने ना। ये अधक कर्म का हुआ। ओक के समान अभी आपको क्रिया कर्म का बता। क्रिया कर्म का काल बताओ। हम क्षेत्र नहीं बता रहे हम आपको काल पूछ रहे हैं। उसका अर्थ है सम्यक दृष्टि का लगातार काल कितना होगा। साधिक 66 साल। एक ही जीव की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा हमेशा ये सब में। हाँ और 99 उन्होंने देखा था ऐसा बताया था। ये हो गया। अभी तप कर्म का अधिक कर्म देखा हमने क्रिया कर्म देखा। तप कर्म का बताओ। कुछ कम पूर्व कोटि और इरियापद का बराबर। और इरियापद का जघन्य काल एक समय। हाँ 11वें में आया और एक समय में मर गया। और इरियापद का जघन्य वो बताया। तप कर्म का जघन्य एक अंतर्मूर्त क्योंकि संयम में अंतर्मूर्त तक रहा। हाँ मन नीचे आ गए कहीं पर भी गया। तो ये हमने देख लिया ओके समान। एक जीव की बात नहीं। एक जीव के अभी हमारे शरीर के परमाणु छूट गए। परमाणु नहीं कहे स्कंद कहेंगे। वो औदारिक शरीर रूप से ही वो स्कंद है। अभी वो पूरे लोक में फैल गए तो उसी रूप से वो कितने काल तक रहेंगे ये उसका कथन है। वो तो आपके हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हम तो श्रुत ज्ञान आगम से हम जान सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन क्या है।
जीवने तो शरीर छोड़ दिया।
अरे जीव ने छोड़ दिया पर वो शरीर का स्कंद स्कंद रूप से रहा ना। शरीर के स्कंद रूप से रहा। जीव ने भले छोड़ा है कल आप ही ने बताया ना हड्डी रहती है करके। नहीं नहीं उसके छोटे स्कंद लेने पूरा बड़ा एक। अरे पूरे लोक में जाता है ये तो नक्की है ना। वो औदारिक शरीर रूप से जो आहार वर्गना औदारिक शरीर रूप से जो परिणमित हो गई है तो उसके उस स्कंद रूप से रहता है। बस स्कंद बहुत छोटा है, उसमें हमने देखा ना कितने कितने स्कंद निकलते हैं, तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे क्योंकि अभव्यों से अनंत गुणे स्कंद निकलते हैं, निर्जरित होते हैं एक समय में। जैसे इतने अनंत लेते वैसे इतने अनंत निर्जरित भी हो रहे हैं। अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग इतने स्कंद, और एक एक स्कंद में उतने ही अभव्य प्रदेशार्थता देखा, हर समय निकलेंगे। तो निकलेंगे तो वो उसी स्कंद रूप से कितने काल तक रह सकते, ये कहना है। और निकले हुए एक समय में निकले हुए पूरे लोक में व्याप सकते हैं। अरे हर समय जा रहे हैं ना, ले भी रहे और जा भी रहे, वो कहाँ पता चलता है, दिखता है? मनीषा में देख रही है, अरे देख रही है तो असंख्यात समय तक देख रहे हैं, पर एक परमाणु एक स्कंद नहीं दिख रहा है आपको, तो कितने जा रहे हैं, पूरे लोक में व्याप्त होकर रहे है ना। जब पूरे लोक को अपना शरीर मान लो क्योंकि अरे एक एक समय में छोड़ा हुआ जा रहा है इतना, तो आपका इतना सब जा रहा है पूरे लोक में वो तो हमको भी पता नहीं चलता है, वो तो पता ही नहीं चलता ना, वो जो निर्जरित हो रहे। हाँ, क्योंकि कर्म भी निर्जरा चल रही हर समय, और यह औदारिक शरीर की निर्जरा चल रही है। और ये बड़े बड़े इन्हें स्कंद है, ये तो परमाणु तो छोड़ दो, हम तो परमाणु आते परमाणु जाते साधारण कथन है। सभी सभी में जाएगा, कुछ तो सिर सोपचे में रहेंगे, कुछ तो निकल जाएंगे कहाँ कहाँ, सबके निकलेंगे। इसीलिए जब हम सोचते हैं ना उद्रव्य परावर्तन, तो पूरे लोक में बिखर गए हैं अभी वो जीव को, और वो बिखर जो गए है स्कंद रूप से, वो अलग अलग समयों में ग्रहण किए हुए हैं, एक तो समय का एक लॉट नहीं है। अरे अनंत लोग, अनंत काल जाता है, असंख्यात लोग उसके सामने नहीं, कुछ नहीं है।
ये तो मैं खाली असंख्यात लोक भ्रमण काल तक तो एक जीव के एक शरीर का परम स्कंद
रह सकते है, एक समय से लेकर उतने, तो उसमें से जब जब गृहित का नंबर आएगा, और वो गृहित का नंबर बहुत बार आता है, एक दो बार नहीं आता है, क्योंकि गृहित आया पर उसी स्पर्श रस गंध वर्ण से नहीं आया था। गृहित का लॉट तो बहुत बार ग्रहण किया, और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस से, यानी वो सारा ही लॉट उसको फिर दोबारा मिलना चाहिए, जो एक समय में उसने ग्रहण किया था वही लॉट। क्योंकि जब तक वही लॉट पूरा का पूरा जब छोड़ेगा एक भव में, तब जाके फिर दोबारा वो लॉट ग्रहण कर सकता है अन्य कभी। ए उसमें तो जितना आप सोचो उतना बहुत रेयरिटी हो जाती
है।
अरे पर वो जो छूटा है वो अलग अलग समय में ग्रहण किया हुआ है, वो एक समय का थोड़ा ही है, उसमें परमाणु हाँ रहेंगे। हाँ हाँ अनंत अनंत ऐसे
वो तो बहुत ज्यादा है ना।
किसी भी जीव ने ग्रहण नहीं किया, एक जीव की बात छोड़ो, किसी भी जीव ने आज तक नहीं ग्रहण किया, तो उसकी अनंतता ख्याल में आती है ना हमें। और केवल केवल ज्ञानी सबको एक समय में जान रहे, तो जाने बिना कहेंगे कि ये किसी ने ग्रहण नहीं किया, कहां किसने जाना, तो केवल ज्ञानी नहीं जाना। तो एक एक परमाणु की अनंत काल की पर्याय को जान रहे तभी तो ये कह सकते हैं। हम तो बस केवली केवली कहते हैं, उसका भाव असर नहीं होता है। देखो हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, उत्कृष्ट काल हमने त्रसों का देखा, पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 2000 सागर और पूरा 2000 सागर, शेष पदों का काल उप के समान है अभी हमने जान लिया। त्रस का एक अपर्याप्त कोंके, अब अपर्याप्त कोंकी जघन्य आयु तो क्षुद्रभव, और लगातार उसमें रहने का काल अंतर, प्रयोग कर्म और समवधान कर्म का कितना काल है, तो कहते नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट काल 80 यानी द्विंद्रिय के 80, तीन्द्रिय के 60, चतुरिंद्रिय के 40, पंचेंद्रिय के 24, सब मिलकर जो है उसको संख्यात अंतर्मूर्तों का जितना जोड़ हो उतना है। तो कितना होता है, 80 और 60 कितने हो गए, 8 × 14 = 140, 180 और 24 204 अंतर्मूर्ति, यानी पूरा अंतर्मूर्ति होगा। अब योग मार्गणा के अनुवाद से, पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये तो समझ में आ गया, ऐसी बात है। इरियापथ कर्म, तप कर्म, इरियापथ कर्म के बाद कॉमा लगा लो, और क्रिया कर्म का भी काल इसी प्रकार कहना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी योगों का परिवर्तन चल रहा है ना। हाँ, अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहता है और एक समय से अंतर्मूर्त। एक समय कैसे घटित होगा योगों में,
जो फलक तो क्या अपेक्षा भी हो जाता ना, ये वचन योग है ना,
मनोयोग वचन योग। हाँ,
तो एक समय में फलक सकता है
कैसे, मरण की अपेक्षा उस योग में आया और एक समय में मरा। व्याघात इसमें योग में होता है क्या, कषाय में तो होता है, काय योग में पलट कर आता है ऐसा कुछ है, काय योग में पलट कर आता है, बाकी में एक समय हो सकता है, फिर भी मरण में तो होता है ना, उस योग में आया, क्योंकि काय योग में एक समय कैसे घटित करेंगे,
नहीं काय योग में नहीं होता है,
एक समय नहीं होता, मरण में होगा कि नहीं होगा। देखो अभी वो कायोग की बात बाद में पढ़ेंगे। अधक कर्म का काल ओघ के समान है, ओघ के समान है एक समय से असंख्यात लोक प्रमाण। अधक कर्म
कायोग में भी एक समय नहीं कठित होगा ना, क्योंकि मरण की अपेक्षा वो कायोग ही रहेगा,
कायोग का कायोग रहेगा। हाँ, कायोग का कायोग रहेगा, कायोग ही रहेगा वो। वैकृत कायोगियों में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। काय योगियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, वो एक समय नहीं बताया, अंतर्मूर्त बताए, क्योंकि मरने की अपेक्षा भी उसमें कायोग का कायोगी रहता है। और उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों के बराबर है, क्योंकि उसमें औदारिक मिश्र और औदारिक कायोग ही रहता है ना, यानी और कारमान कायोग, हमें तो कायोग इतना ही लेना है इन जनरल। वैकृत कायोग तो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा, उसमें एक समय इसलिए हो सकता है, वैकृत कायोग ना स्पेसिफिक है, उसके बाद मरण होकर कारमान का योग हो जाएगा, औदारिक मिश्र हो जाएगा, वैकृत कायोग में एक समय घटित हो सकता है, पर औदारिक कायोग में, हाँ देखो देखो, औदारिक कायोग अगर कहेंगे एक समय घटित होगा, पर कायोग कहेंगे तो एक समय नहीं घटित होगा। देखो मरण के पूर्व मनोयोग या वचन योग में से वैकृत कायोग में आया और एक समय में मरा, इसलिए वैकृत कायोग का ऐसा, सभी तीनों योगों में ऐसा लेना, मनोयोग वचन योग और वैकृत कायोग। आहार कायोग में भी एक समय घटित होगा, कारमान कायोग में एक समय नहीं होता, वो तो अंतर्मूर्त होता है। और उत्कृष्ट काल अनंत देखा हमने, शेष पदों का काल ओघ के समान है। शेष पद यानी कायोगी कहने से सभी पद हो गए, तो अधक कर्म का काल हमने देखा एक समय से असंख्यात लोग, काय योगी में तप कर्म का काल कुछ कम पूर्व कोटि, नहीं तप कर्म का अंतर्मूर्त होगा, ओक के समान है, ओक के समान है क्या, इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, तो ओक के समान क्यों लिखा, अंतर्मूर्त होता है, जघन्य अंतर्मूर्त होता है, ये उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त होगा। ओक के समान क्यों लिख दिया? फिर से जरा ओक को निकाला। अंतर नहीं, काय योगी अंतर्मूर्त कर रहे हैं, काय मगन योग वचन योग पलटते रहेगा ना,
तो यह तो एक समय घटित हो जाएगा ना वर्ण की अपेक्षा। कर्म का क्योंकि काय योग
एक समय की बात नहीं चल रही है,
और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होगा।
हाँ वही उत्कृष्ट की बात करें। पर यह ओक के समान क्यों कहा? ये एक मिनट, शेष पदानम ओग भंगो, ओक की बात निकालो। क्योंकि उत्कृष्ट काल जो है वो घटित नहीं होगा, है ना?
अंतर्मूर्ति होगा।
उन तप कर्म का जगन्य काल एक समय हो सकता है ना, काय योग में आया और फिर पहले मनोवचन योग, मनोयोग वचन योग करते करते काय योग में आया, मरण हुआ है, नीचे के गुणस्थान में आ गए। दे ओग के समान जो लिखा है वो बराबर घटित नहीं हो रहा है। इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्म का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, पर क्रियाकर्म में भी अंतर्मूर्त ही घटित किया। उसका अर्थ है जो अंतर्मूर्त है सम्यक्त्व का, ऐसा क्यों कहा अंतर्मूर्त है? एक जीवन पड़े जो जहन्य ना अंतर्मूर्त कैसे अंतर्मूर्त,
ये तो क्रियाकर्म का भी अंतर्मूर्त बताया है।
हाँ उसमें भी वो कायोग में आकर फिर या पहले वो समय को प्राप्त करने के पहले अन्य योग में था, और फिर समय को प्राप्त करने के समय में एक समय के लिए काय योग में से मनोयोग में चला गया, एक समय तो हो सकता था ना। यहाँ क्यों लिया अंतर्मूर्त? और ओक के समान क्यों कहा?
ये शेष पदों का ओक के समान तो प्रतीत नहीं होता है ना।
हाँ देखो देखो, यहाँ क्या प्रयोग कर्म और समवदान बता दिया उन्होंने, वो तो ठीक है। अधक कर्म का तो एक समय से असंख्यात लोग तो वो घटित हो ही जाएगा, अधक कर्म का तो ठीक है, परंतु तप कर्म का और इरियापद एक समय होगा और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होगा, है ना? क्योंकि वहां का योग कहां लंबे काल तक चलने वाला है, केवली में भी लंबे काल तक एक ही योग कहां है?
नहीं नहीं, वो तो पलट कर देगा ना।
वही तो, यानी अंतर्मूर्त से ज्यादा होगा नहीं, एक काल ओग के समान है, ये बात यहाँ घटित नहीं हो रही है। ऊपर क्या ऐसा ही लिखा है ना, शेष पदानम ओगम भंगो नवरी क्रिया कम्मम जहन्नम तमोत्तम, इवन क्रिया कर्म का भी होगा एक समय।
सभी के लिए एक समय और अंतर मुहूर्त हो जाएगा।
नहीं, क्यों कहते हैं? क्यों तब क्रिया कर्म का जघन्य अंतर मुहूर्त तो ओघ में ही बताया था, तो फिर नवरी शब्द क्यों डाला? ख्याल में आई बात? अगर ओघ के समान बताते थे तो नवरी शब्द डालने का क्रिया कर्म के लिए क्या प्रयोजन था? फिर से निकालो वो ओघ के बाद, फिर से दोबारा निकालो। कहाँ गया काल? हाँ, पेज नंबर 107 से शुरू हुआ था, 108 पर तप कर्म का जघन्य काल अंतर मुहूर्त देखा था हमने, है ना? और फिर क्रिया कर्म का कहाँ बताया है?
क्रिया कर्म का भी अंतर मुहूर्त दिया है।
एक सेकंड, नीचे है ना? एक सौ नौ पर है, जघन्य काल अंतर्मूर्त है। क्रिया कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त तक वो उसमें रखा। हाँ, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहते तो ठीक है। नवरी जो लिखा है ना, नवरी किया कम्मम जहन्नम अंतम उत्तम उपकस्य न अंतम उत्तम चाहिए था, बराबर है ना?
ये क्रिया कर्म का, क्रिया कर्म हम 4 से 7 गुण स्थान में लेते हैं, जो श्रेणी से उतरा और 7वें गुण स्थान में आया, और एक समय में मर सकता है, मरण हो सकता है।
मरा तो समय दृष्टि रहेगा, का योग का का योग रहा? और 7वें से आया तो 7वें में तो क्रिया था ही थी।
नहीं, 8वें से आया,
8वें से 7वें में आया, तो 7वें में आए तो चल ही रही थी ना। हाँ, अंतर्मूर्त यानी नवरी जो लिखा है ना, जहन्नम अंतम उत्तम, तो नवरी क्रिया कम्मम उपकस्य न अंतम उत्तम चाहिए था। वो तो सबके लिए उपकस्य न अंतम उत्तम है, यानी ये दोनों ही लाइन घटित नहीं होती है, या हमारे ख्याल में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, जरा देखना पड़ेगा।
पर योग का तो हम लोग ने देखा ना, कोई भी जगह का यहाँ पर तो अंतर्मुख से ज्यादा काल होता ही नहीं है, तो की अपेक्षा वो घटित नहीं होगा ना।
जरा जीव कांड निकालिए, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट दरवाजा खोलो। हाँ, वो यू और डी लिखा है ना, राइट साइड का बड़ा। हाँ, मेरे को यू वाला देना। योग का ही जघन्य काल देखेंगे ना तो पता चलेगा कि नहीं। समय दृष्टियों में मार्गणा में जघन्य काल देखना है। मेरा क्या, कहाँ देख रहे हैं? 275 पेज, योग मार्गणा, एक जीव की अपेक्षा काल। योग मार्गणा में मत ढूंढो, जहाँ से शुरू हुआ है प्रकरण, कौन सा मार्गणाओं का, वहाँ है। देखो, योग मार्गणा में वचन योग और मनोयोग में मिथ्या दृष्टि, संयत, संयता संयत, प्रमत, अप्रमत, चारों उपशामक, शपक, सहयोगी, इनका जघन्य एक समय, यानी वो विवक्षित गुणस्थान में आने पर एक समय में योग के पलटने से एक समय घटित होता है। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त सासादन मिश्र का सामान्यवत काल है। काय योग में मिथ्या दृष्टि का जघन्य एक समय है ना, काय योग में भी एक समय लिया, एक इन सभी गुणस्थानों में। उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, क्योंकि एक इंद्रियों में काय योग के अलावा अन्य योग नहीं पाया जाता। अवशेष का मनोयोगवत काल है,
तो अंतर्मूर्त ही लेना पड़ेगा।
जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। क्योंकि योग मार्गणा का ही काल हमने देखा है ना, एक एक और सभी यानी वो तो समय दृष्टियों में संयतों में सभी में यानी केवली में भी ले लिया है सब में।
तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे हम लोग।
हाँ क्वेश्चन मार्क करके ये जो दो यानी क्या है देखो यहाँ लिखा है ना प्राकृत में पांचवी लाइन लास्ट में शेष पदानम ओगम भंगो नवरी क्रिया कम्मम जहन मंतोमोत्तम। तो इसके बदले पेज नंबर है 120 पर। हाँ लास्ट में जो है ना वो पेंसिल से जरा उसको शेष पदानम ओगम भंगो नवरी क्रिया कम्मम जहन मंतोमोत्तम इसके लिए हम दूसरी बात हिंदी में लिखेंगे। वहां पर नीचे भी लिखा है ना ओग के समान है इतनी विशेषता की क्रियाकर्म का जघन्य काल अंतर्मूर्त है ये घटित नहीं हो रहा है
एक समय से
तो हाँ और हम अपने लिखने की कोशिश करेंगे
दो सेंटेंस लिखना पड़ेगा।
हाँ इसमें अधकर्म का काल ओग के समान बताया परंतु देखो ऐसा लिखना पड़ेगा क्रिया कर्म तप कर्म और इरियापत कर्म का क्रिया कर्म तप कर्म इरियापत कर्म का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। है और अधक कर्म का काल ओक के समान है। सभी मार्गणाओं में उसका काल उतना ही है बता चुके थे ना वो निकल जाने के बाद कितने समय तक रहा योग वाले का निकला तो भी वो तो असंख्यात लोग होगा। उसके क्षेत्र में और उसके काल में सब मार्गणाओं में वही कथन आता है। अब देखो आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार औदारिक कायोगी जीवों के सब पदों का काल कहना चाहिए। समवधान ही कर रहे वो सब ने समोदान समोदान समवधान शुरुआत शुरुआत में मैंने निकाला था बाद में रख दिया ऐसा ही अभी तक मैंने निकाला है सब जगह से केवल उसमें लाइन लिखे साइड में लिखा नहीं वो पेंसिल से धाका ऐसा लाइन कर दिए। देखो अभी समवदान हाँ सब जगह ऐसा ही ना देखो वही 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 चालू रखा क्योंकि जहां से शुरुआत हुई थी देखो ना यहाँ नाम बताए थे
समवदान
हाँ एक्चुअली जहां शुरुआत हुई थी ना जो उसके नाम बताए थे 91 है उसके भी पहले 38 पर बताए होगे क्षेत्र नहीं 91 से कहां से शुरुआत जहां छह कर्म का अधिकार है तो अधक कर्मों के पहले समवदान देखो नहीं नहीं 45 पेज निकालो 19 नंबर का सूत्र समवदान कर्म का अधिकार है ना और ऊपर समोदान कहा है उसका भाषांतर समवदान किया था और उसके नीचे भी समवदान समवदान ही कहा है और फिर बाद में जब वो आगे चलकर फिर समवधान समवधान करना चालू किया उन्होंने, बहुत बाद उसकी। चलो, यानी समवधान शब्द ठीक है। अब औदारिक काय योगियों की बात करते हैं। तो औदारिक काय योग में रहने का जगन्य काल कितना है? औदारिक मिश्र बाद में, पहले औदारिक काय योगी है ना, जहां हमने करेक्शन किया ना उसके बाद। हाँ, इसी प्रकार औदारिक काय योगी जीवों के सब पदों का काल कहना चाहिए। अब काय योग में तो जगन्य अंतर्मूर्त लिया था उन्होंने प्रयोग का और समवधान का, परंतु यहाँ तो एक समय घटित होगा क्योंकि मनोयोग से औदारिक काय योग में आया और मरण हुआ, तो कर्मण का योग हुआ या औदारिक मिश्र हुआ या वैकृत मिश्र हुआ। इतनी विशेषता है। देखो ये भी है ना कि यहाँ लिखा था एक जीव की अपेक्षा काल जगन्य अंतर्मूर्त है, तो यहाँ एक जीव की अपेक्षा एक समय, ये भी विशेषता है उसकी। औदारिक कायोगी जीवों के सब पदों का काल कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि जहाँ अनंत काल है वहाँ अंतर्मूर्त कम 22,000 वर्ष कहना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट में औदारिक कायोग सतत चालू रहे किसी को तो ये पृथ्वी कायिकों में है। तो कुछ कम क्यों किया? क्योंकि स्टार्टिंग में उसके औदारिक मिश्र होगा, जब तक निवृत्ति अपर्याप्त है तब औदारिक मिश्र का योग होगा, बाद में वो औदारिक कायोगी होगा, इसलिए कुछ कम कर दिया।
जगन के बारे में भी लिखना पड़ेगा ना एक,
वही महा और जगन्य एक समय होगा 22,000 वर्ष में। यहाँ लिखा है जहाँ अनंत काल है वहां अंतर्मूर्त कम 22,000 वर्ष कहना चाहिए। आगे लिखे और जगन्य काल एक समय, सभी में यानी वो तो काय योग में रहने का देखा था, काय योग में। हाँ, इन जनरल, क्योंकि वहाँ औदारिक मिश्र भी हुआ, औदारिक भी हुआ, क्योंकि एक इंद्रिय में दो ही है ना, और कारमान हुआ। हाँ हाँ, काय योग में रहा वो तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन एक इंद्रिय में। यह सभी में एक समय काल घटित होता है, क्योंकि औदारिक काय योग का ही एक समय काल घटित हो सकता है। किसमें? पंचेंद्रियों में है अभी। हाँ, मनुष्य तीन इंच में मनोयोग से औदारिक कायोग में आया और एक समय में मर गया, तो औदारिक कायोग का एक समय घटित हो सकता है। औदारिक मिश्र का नहीं एक समय घटित हुआ, वो तो अंतर्मूर्त एक जीव की अपेक्षा रहेगा ही रहेगा। हाँ, वहां पर भी लिया कपट समुद्घात वाले को, औदारिक मिश्र वाले को एक समय कपट समुद्घात में। देखो, औदारिक मिश्र काय योगियों में नीचे लिखा है प्रयोग कर्म और समवधान कर्म का कितना काल है। नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय है, क्योंकि कपट समुद्घात को प्राप्त केवली जिनके वह पाया जाता है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि एक जीव को लगातार एक भव में भी अंतर्मूर्त होगा और लब्धि पर्याप्त उनके बहुत भव किए तो भी अंतर्मूर्त ही होगा सब मिलकर भी। हमने देखा था उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय के मिलकर 66,336 होते हैं भव, तो सब मिलकर भी अंतर्मूर्त ही कहेंगे। यह कहाँ पाया जाता है? अच्छा, वो उत्कृष्ट काल एक ही जो औदारिक मिश्र का समाधान सर्वार सिद्धि से आकर मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव के वह पाया जाता है। यानी निवृत्ति अपर्याप्त का लंबा काल किसको होता है? क्योंकि जो देव में से आए ना तो उसके आराम से पर्याप्ति पूरी करते हैं, ये कह रहे हैं। नरक से आने वाला जल्दी जल्दी कर देता है, वही तो वहां तो बिल्कुल, इसीलिए लिया कि मैक्सिमम काल किसको लगता है वही, क्योंकि सर्वार सिद्धि में तो 33 सागर तक वो तो समय दृष्टि रहा है, उसको कोई जल्दी नहीं है अभी उसका। लगातार हाँ, उससे भी ये काल बढ़ा है, ऐसे लेना पड़ेगा ना। नहीं पर वो अनेक जीव अनेक भवों की बात है, यहाँ एक ही हाँ ले सकते हैं, परंतु ये बढ़ा लिया, ये बढ़ा लिया, उससे भी ये बढ़ा लिया। देखो सर्वार सिद्धि से आकर मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव के वह पाया जाता है, उसकी ज्यादा डिटेल यहाँ चर्चा नहीं की, परंतु हमने ऐसा भी देखा था कि वो लघु काल होता है ना, और किसी का बड़ा है तो ये हाँ जल्दी जल्दी पर्याप्ति पूरी करता है, इतने दिन कुछ खाया पिया नहीं ना इसलिए। और ईर्ष्यापथ और तप कर्म का कितना काल है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, नाना जीवन की अपेक्षा भी, क्योंकि कपाट समुद्रात को प्राप्त केवली जिनके वह पाया जाता है, और उत्कृष्ट काल संख्या समय, ने एक केवली ने किया, फिर दूसरे ने कपाट किया, फिर तीसरे ने कपाट किया, इस तरह से संख्या समय कहेंगे, क्योंकि जो सहयोगी जिन निरंतर उतरने और चढ़ने के व्यापार द्वारा कपाट समुद्घात को प्राप्त हो रहे हैं, उनके संख्या समय पाए जाते हैं।
तो नाना जीव की अपेक्षा बताया है, तो तप कर्म और वो तो हम लोग 13वें गुण स्थान में लेते हैं, तो वो तो सदा काल हो जाएगा ना, नाना जीवों की अपेक्षा बात है।
औदारिक मिश्रा में देख रहे हैं। मात्र कपाट समुद्घात को लेना है, यानी एक जीव ने कपाट समुद्घात किया, फिर वो वही जीव तीन समय छोड़कर चौथे समय में फिर कपाट समुद्घात में आया, वो तीन समय तक अन्य किसी ने फिर उसको कपाट समुद्घात करते रहा, होता ही है। तब कर्म 14वें तक लिया है, छठे से 14वें तक, पर यहाँ औदारिक मिश्र में तप कर्म लेना है, एक समय यहाँ घटित होगा। समझ में आते हैं? देखो कपाट करने वाले लगातार चार जीव लिए, तो कितने समय तक लगातार उनका चलेगा बोलो? लगातार चार समय तक जिन्होंने कपाट समुदाय के अलग जीवों ने, उनका औदारिक मिश्र का काल लगातार कितना रहेगा?
देखो
ये औदारिक मिश्र वाला पहला था, फिर ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, ये चौथा जब चढ़ने लगा तो पहला वाला नीचे आया, सात हो जाएंगे ना। देखो ये पहुंचा, ये जब तक कपट में आया तब यहाँ उतरने वाला कपट, फिर उतरने वाला कपट, इस तरह से ले सकते हैं। अब अधिक भी जीव ले सकते हैं हम उसमें, क्योंकि 1+3 ऐसा लेना है ना उसमें, तो उसमें और लास्ट वाला और तीसरे समय के बाद चौथे समय में आ जाएगा, सात या आठ समय हो जाएगा। संख्यात समय वो तो हो गया अभी यहाँ पर, पेज नंबर 121। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये तो समझ में आती है बात? हाँ मनीषा भी। अब क्रिया कर्म का म के ऊपर रफार दो, कितना काल है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त, औदारिक मिश्र की बात है, तो प्रेरणा बेन औदारिक मिश्र में क्रिया कर्म कब होगा? द्वितीय ऑप्शन वाला देव में जाएगा, औदारिक मिश्र समय दृष्टि मनुष्य तिर्यंचो में उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा लेना, तिर्यंचो में नहीं उपशायिक वाला, बहुभूमि में मनुष्य तिर्यंचक शाइक के साथ उत्पन्न होने वाले, या देवनारकी में से मनुष्यों में आने वाले। तो एक या अधिक जीव आए तो भी मनुष्य ही संख्यात है, तो उसमें आने वाले जीव बहुत कम हो गए, सम्यक्तों के साथ आने वाले एक के बाद एक आते रहे, फिर भी वो संख्या थी जीव आएंगे तो अंतर्मूर्त होगा। समझ में आती है बात? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही है। इतनी विशेषता है कि जघन्य से उत्कृष्ट काल संख्यात गुणा है, क्योंकि यह बहुत काल पाया जाता है। ये समझ में आई बात? क्योंकि एक जीव आया तो वो अंतर्मूर्त रहेगा, फिर दूसरा आया अंतर्मूर्त रहा, फिर तीसरा आया अंतर्मूर्त रहा, कोई देव से आया कोई नरक से आया, समय को किसके साथ आया है ऐसा लेना है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यह कहाँ पाया जाता है? देखो फिर से वो उत्कृष्ट काल जो औदारिक मिश्र का देखा था हमने, सर्वार सिद्धि से लाया था उसको, अभी ये तो सम्यक्त्व के साथ आने वाला, और उसका जघन्य काल चाहिए। हाँ, यह छठी पृथ्वी से आकर मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव के पाया जाता है। इस प्रश्न चिन्ह क्यों किया? पाया जाता है, दंड चाहिए। क्योंकि ये सम्यक्त्व के साथ लाया हुआ आने वाला जीव लेना, क्योंकि औदारिक मिश्र की बात है ना, औदारिक उत्कृष्ट। मैंने बताया ना कि जल्दी कौन पूरा करता है, जल्दी शरीर पर्याप्ति जल्दी पूरी कौन करता है, या छह पर्याप्तियों का जघन्य काल किसके? तो नरक से आने वाले का। भोगभूमि किसके औदारिक मिश्र होते हैं ये पूछ रहा था पहले, में पहले बात बताई थी, अब उसकी बात नहीं है। अब हाँ, और जघन्य काल किसके होगा? छठे नरक से। पर ये दोनों क्रिया कर्म बता रही है, तो दोनों सम्यक्त्व से आए हुए जो ऊपर से तो सम्यक्त्व के साथ ही आ रहा है। ये छठी पृथ्वी सम्यक्त्व से आया है ना, क्योंकि औदारिक मिश्र में हमको क्रिया कर्म चाहिए। उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही है, जघन्य काल छठी पृथ्वी से आया हुआ। उत्कृष्ट काल सर्वार्थ सिद्धि से आकर मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव के यह उत्कृष्ट काल ग्रहण करना चाहिए। अब इन बिटवीन यथा योग्य। वैकृत मिश्र काय योगियों में, अब वैकृत मिश्र ने देव और नारकियों की अपर्याप्त अवस्था लेना, प्रयोग कर्म समवदान कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट काल पल्ल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव उत्पन्न हो सकते हैं देव और नारकी में, इसलिए उनका सबका एक एक का अंतर्मूर्त कहेंगे तो पल्ल्य का असंख्यात विभाग हो जाता है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त ही होगा, है ना? वो जघन्य उत्कृष्ट का थोड़ा भेद होगा वैकृत मिश्र का। यह काल कहां पर उपलब्ध होता है? जघन्य काल की बात है, छह मास तक क्षपणा करने वाला जो गिलान साधु, गिलान का अर्थ क्या है? गिलान साहूम्य, सर्वा सिद्धि के देवों में उत्पन्न होता है, उसके यह काल उपलब्ध होता है। यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए, दंड चाहिए। शपने ने छह मास की, मेरे ख्याल से वो तो छह मास उपवासी ऐसा कुछ होगा शायद, यानी वो कहीं कहते होगे ना उसको, उवन छम्मास खवन गिलान साहू में, छपना करने वाला ग्लान साधु, गिलान ने उन्होंने छह मास उपयोगी होने चाहिए, वहां उत्पन्न होने वाले ऐसे भी है ना। हाँ खवण, छम्मास खवण गिलान साहू में,
ये भी सर्वार्थ सिद्धि में, सर्वार्थ सिद्धि पर देवगुण उत्पन्न होता है वो अपेक्षा से भी है।
हाँ देखो देखो क्या कहते हैं, सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होगा, उसके पहले छह मास तक उसने कुछ तप वगैरह जो अलग अलग जो आते हैं ना उसके, कौन से क्या नाम है उनका, वो आता अलग अलग योग बताते हैं ना, आतापन योग या प्रतिमा योग इस तरह से, वैसा वैसा होना चाहिए। हाँ बाद में नहीं, छठा सातवा चलता है, श्रेणी तो एक या दो भी बार मांडेगी ना। हाँ वही तो, उसके पहले छह मास तक उसने कुछ तप किया हो, यानी वो छह मास के तप करने वाले ऐसे कोई होने चाहिए। उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही है। अब वैकरिक मिश्र में उत्पन्न होने वाले हैं, जो चक्रधर मरकर सातवी पृथ्वी में उत्पन्न होकर, वो हो यहाँ तो सर्वार सिद्धि में जाने वाला। देखो औदारिक मिश्र का उत्कृष्ट किसके है, सर्वार सिद्धि से आने वाले औदारिक मिश्र, वैकरिक मिश्र का उत्कृष्ट सर्वार सिद्धि में जाने वाले, बराबर क्या, जगन्य होता है, जगन्य होता है, जगन्य होता है, और उत्कृष्ट उल्टा लेना, उत्कृष्ट औदारिक मिश्र में उत्कृष्ट किसको लिया था, देखो 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 फिर से हम औदारिक मिश्र की याद करा रहे हैं। औदारिक मिश्र में उत्कृष्ट कौन सा है, सर्वार सिद्धि से आने वाला, और जघन्य किसको है, छठी से आने वाला, बराबर क्रियाकर्म का जगह, क्रियाकर्म का वही वही होगा। अब दूसरा वैकरिक मिश्र में देखते हैं, वैकरिक मिश्र का जघन्य अंतर्मूर्त कहाँ है, सर्वार सिद्धि में उत्पन्न होने वाले साधु के हैं, और वैकरिक मिश्र में उत्कृष्ट काल किसके लगेगा, तो चक्रवर्ती मरकर सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होता है और अति दीर्घ काल द्वारा पर्याप्तियों को समाप्त करता है उस नारकी जीव के, यह काल उपलब्ध होता है। ये इन जनरल वैकरिक मिश्र और औदारिक मिश्र का बड़ा काल कहाँ होता है वो बता रहे। अब कहते इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल मरकर पृथ्वी पृथ्वी में उत्पन्न हुए समय दृष्टि जीव के कहना चाहिए, क्योंकि वो तो क्षायिक ही होगा वो, या कृतकृत्य वेदक हो सकता है। तो कहते क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल यानी वो तो नरक में जाने वाले का वैकरिक का काल उत्कृष्ट होता है, बस ये लेना है। फास फास करते हाँ, यानी औदारिक मिश्र और वैकरिक मिश्र का काल, यानी जघन्य और उत्कृष्ट, और वैसे वैकरिक मिश्र का, जघन्य सातवीं से आने वाला, नहीं छठी से लिया, केवल औदारिक मिश्र का दें तो सातवीं से आने वाला जीव हम कहेंगे, यहाँ क्रिया कर्म की बात थी इसलिए छठी से लाया, और उत्कृष्ट सर्वार सिद्धि से आने वाला, और वैकरिक मिश्र में ऊपर जाने वाले का जघन्य, यानी सर्वार सिद्धि में जाने वाला और उत्कृष्ट सातवीं पृथ्वी में जाने वाला,
वो भी चक्रदल पर होता है।
हाँ, क्योंकि यहाँ तो सुविधा में रहा है ना। ये हो गया लास्ट लाइन। अभी आहार काय योगियों में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, तप कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है? नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। यानी मनोयोग वचन योग से उसमें आ गए और एक साथ वो मर कर चले गए। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये भी आसान है ना, ये समझने जैसे। आहार मिश्र का योगी, आहारक मिश्र चाहिए, आहार मिश्र हुआ करेगा। आहारक मिश्र का योगी जीवों के उक्त सब पदों का काल इसी प्रकार कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार का काल अंतर्मूर्त है। हाँ, क्योंकि इस योग के रहते हुए न तो मरण होता है और न योग का परिवर्तन भी होता है। आहारक द्विक में उद्भी हुआ है, आहारक द्विक में यानी दोनों में अधक कर्म का काल ओक के समान है, यानी एक समय से असंख्यात लोग। देखो मरण के बारे में तो दोनों जगह स्वीकार है, परंतु इसमें देवायु बंधने की अपेक्षा यहाँ धवला में नहीं, कहाँ पर शायद जीव कांड में उसको देवायु का बंधन नहीं स्वीकार है, औदारिक मिश्र अवस्था में, पर महाबंध में उसको स्वीकार किया है। देवायु का बंध वहां पर भी लिया है आहारक मिश्र में। हमने जीव कांड में वहां नहीं होता बंध ऐसा देखा था। देखो अभी आगे बढ़ते, कार्मण कायोग वाले जीवों में प्रयोग कर्म व समवदान कर्म का काल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, क्योंकि कार्मण कायोग का एक समय काल होगा और उत्कृष्ट काल तीन समय है, जो तीन मोड़ वाले के होगा। इरियापद कर्म और तप कर्म का कितना काल है? कार्मण का योगी है ना, तो एक जीव को तीन समय तक रहेगा वो, तो नाना जीवों को संख्या समय कहेंगे। नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल तीन समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल तीन समय, उसमें कोई हीनाधिक नहीं होगा। क्रियाकर्म का काल कितना है? कार्मण का योग में क्रियाकर्म का काल, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। प्रेरणा बिना आप कहेंगे कैसा होगा? कार्मण का योग में क्रिया कर्म नहीं, हाँ समय दृष्टि चाहिए ना, मरकर सम्यक्त्व के साथ मरकर जाने वाले चाहिए। तो किसकी मुख्यता किसकी है? इतना जो असंख्यात संख्या किसकी अपेक्षा से है? मनुष्य तो संख्यात है। देखो मनुष्य मरकर जावे या देवनार के मनुष्यों में आवे तो संख्यात होगी, तिरियंचों की संख्या होनी चाहिए, अवली के असंख्यात विभाग है ना। इसलिए उत्कृष्ट काल अवली का असंख्यात भाग कहा। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। तो लक्ष्मी मेरा एक प्रश्न है, यहाँ प्रयोग कर्म के लिए तो तीन समय लिए और क्रिया कर्म के लिए दो समय लिए, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि त्रस में से त्रस में जाने वाला दो मोड़ ही लगा, वो सूक्ष्म को ही ये तीन मोड़ हो सकते हैं, जो बाहर रहने वाला है त्रस नाली के। अब वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेद और पुरुष वेदी जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक युग की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, प्रेरणा बिन बताएंगे। हाँ बहुत अच्छा, देखो उपशम श्रेणी चढ़ा, प्रेरणा मनीषा बेन, उपशम श्रेणी चढ़ा तो अपगत वेदी हो गया था, बाद में उतरा तो स्त्रीवेद का उदय शुरू हुआ, और एक समय में मरा तो देव हुआ तो पुरुष वेदी हुआ। पुरुष वेद का कहाँ कहाँ एक समय,
पुरुष वेद का भी पता है। अच्छा,
एक युग की अपेक्षा जगन्य काल एक समय और अंतर्मूर्त है, ये क्या कहा? पुरुष वेद का अंतर्मूर्त है, स्त्री वेद का एक समय है, क्योंकि पुरुष वेदी अगर एक समय में मरा भी तो देव पुरुष होकर ही जन्मता है, तो उसका पुरुष वेद तो चालू ही रहा है ना। तो अंतर्मूर्त कहाँ लेना?
छोटा भाव पुरुष वेद का,
पुरुष वेद का छोटा भाव ले लो, या उपशम श्रेणी उतर कर सर्प श्रेणी चढ़ाओ, या दो बार उपशम श्रेणी चढ़ाओ।
हाँ
हाँ, वो भी अंतर्मूर्त होगा है ना। फिर क्षपक श्रेणी चढ़ी, हाँ यानी श्रेणी चढ़ी इतना कहे हम। और उत्कृष्ट काल सौ पल्योपम पृथक्त्व प्रमाण और सौ सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण, स्त्री वेद में लगातार रहने का उत्कृष्ट काल सौ पल्य पृथक्त्व है, और पुरुष वेद का काल सौ सागर पृथक्त्व है। तप कर्म का कितना काल है, नाना जीवन की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, ऐसा ही लेना उसको, क्योंकि तप है ना, उसको उतर कर वो वेद वाला हुआ तो तप कर्म तो चालू है उसका, और देव में गया तो तप कर्म नहीं रहा। और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है। अब ये स्त्रीवेदी पुरुषवेदी दोनों के लिए तप कर्म का एक समय घटित होगा, क्योंकि देवों में तो तप कर्म ही नहीं, भले वो पुरुषवेद का पुरुषवेदी रहा पन उतर कर पुरुष वेद में आया, एक समय तक पुरुष वेद के साथ तप कर्म रहा, और देव में गया क्रिया कर्म रहा पन तप कर्म नहीं रहा। उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि, एक कुछ कम पूर्व कोटि क्यों कहा?
तप कर्म से
हाँ, तप कर्म का उत्कृष्ट काल कैसे घटित करेंगे, स्त्री वेदी हो या पुरुष वेदी हो? तप कर्म किसको होता है? मुनियों को होता है। तो मुनि अर्लीस्ट कब बनेंगे? 8 साल के बाद बनेंगे ना, और पूर्व कोटि की आयु होगी तो कुछ कम पूर्व कोटि होगा ना, ये कहना चाहते हैं। उत्कृष्ट काल हमको लेना है, उसको संयम में ही रखो, और संयम कब प्राप्त किया था? 8वें साल के बाद। हाँ, इसलिए कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण का। क्रिया कर्म का कितना काल है? देखो देखो, अभी स्त्री वेद में क्रिया कर्म का उत्कृष्ट काल, लक्ष्मी आप बताएंगे? कपड़ लिया
नहीं पड़ा।
स्त्री वेद में क्रिया कर्म का उत्कृष्ट काल बोलो, बचपन पल्ले, कुछ कम बचपन, क्योंकि वहाँ उसके साथ तो जन्मा नहीं।
बचपन पल्ले स्त्री वेद में क्रिया कर्म का मात्र है,
क्यों देवी को क्यों छोड़ा?
अच्छा देवी ने, सॉरी।
वही तो बोल रही, पचपन पलने में प्रेरणा बहन ने भी बताया ना।
अच्छा मैं पुरुष में हो जाएगा वो।
और पुरुष वेद में कितना होगा?
पुरुष वेद में तो ज्यादा होगा।
कितना ज्यादा?
पुरुष में शादी 33 सागर,
33 सागर से शुरू करना, और फिर पूर्व कोटि में आया और लास्ट में जाके संयम धारण किया, ऐसा लेना। पहले लिए तो पहले संयम ही था ना। अच्छा क्रिया कर्म है, क्रिया कर्म नहीं,
नहीं
क्रिया कर्म तो पहले बराबर, उसके आने के भाव ले सकते हैं।
और तप कर्म का तो हम लोग
नहीं, नहीं क्रिया कर्म तो दो छा नहीं, एक शास्त्र सागर यानी जो 99 किया था वो होगा, साधिक शास्त्र सागर। पुरुषवेद तो पुरुषवेद ही रहा, उसमें तो कुछ बात नहीं है, तो जो हमने ओघ में देखा था ना वही पुरुषवेद में घटित होगा। अभी हम यहाँ से पढ़ते, क्रिया कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, हाँ वहाँ तो 66 सागर लिया है शादी, यहाँ तो 99 के बाद नहीं उठाएंगे शायद, देखते कोई क्या करते। एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय और अंतर मूर्त है, क्योंकि दोनों की बात है ना, स्त्री वेद और पुरुष वेद की बात हो रही है। एक समय कैसे घटित होगा?
नहीं
देखो देखो, क्रिया कर्म की बात करें,
क्रिया कर्म में तो नहीं अंतर होगा ना, क्रिया
कर्म में तो जगन्य काल एक समय कह रहे, फिर से तप कर्म का एक समय से उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि तो हो गया,
वो तो बराबर है।
क्रिया कर्म का कितना है? तो एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय है और अंतर मूर्त है, यानी स्त्री वेदी के लिए एक समय और पुरुष वेदी के लिए अंतर मूर्त। हाँ वो श्रेणी में क्रिया कर्म नहीं है ना, नहीं समझे, सातवें में एक समय में आया और मर गया, सातवें में एक समय में मर गया,
और पुरुष पे तो
वो तो वहाँ तो हाँ उतरते समय सातवें में लाना, हाँ मैंने भले श्रीवेद का उदय चल रहा था बहुत समय से, पर सातवें में आया तो हाँ और एक समय मर गया, और पुरुष वेदी तो अंतर्मूर्त हुए सम्यक्त्व में रहने का काल। उत्कृष्ट काल आदि के तीन अंतर्मूर्त कम 55 पल्य स्त्री वेदी में, तथा दो पूर्व कोटि और 33 सागर अधिक 66 सागर है, इतना ही लिया है, वही लिया ना, दो पूर्व कोटि और 33 सागर अधिक 66 सागर, यानी वो 99 करीबन हो जाता है। पहले उन्होंने 66 सागर में घुमाया था और बाद में उन्होंने 33 सागर और एक और भव लिया था। हाँ अब नपुसक वेद वाले जीवों में, अब नपुसक वेद में रहने का लंबा काल और छोटा काल कितना होगा? एक समय हाँ, जैसे स्त्री वेद में एक समय लिया था वैसे हम यहाँ एक समय ले सकते हैं। और लंबा काल असंख्यात पुद्गल प्रवृत्ति एकेंद्रिय में रहेगा ना, असंख्यात पुद्गल। देखो फिर पढ़ेंगे यहाँ, नपुसक वेद वाले जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, एक समय उपशम श्रेणी उतरते समय, क्योंकि बहुओं की अपेक्षा करेंगे नहीं तो क्षुद्र भव लेना पड़ता। और क्योंकि यहाँ तो श्रेणी उतरते समय नपुसक वेद का उदय हो गया, मर गया तो पुरुष वेद हो गया। और उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। तप कर्म का भंग स्त्री वेद जीवों के समान, वो स्त्री हुआ स्त्री करना,
तप कर्म का एक समय
हाँ उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि, यानी एक समय से कुछ कम पूर्व कोटि। क्रिया कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, जैसे सातवें में आया, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है, सातवें नरक में हाँ वो नपुसक वेदी है तो सम्यक में रहा कुछ कम। अपगत वाले जीवों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, ईर्यापद कर्म और तप कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक फुल स्टॉप दे लो। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, क्योंकि अपगत वेदी हुआ और एक समय में मर गया। और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है। घड़ी पीछे है मेरे ख्याल से ना? ये पढ़ लेते विशेषा। यहाँ वेद मार्गणा की अपेक्षा सब कर्मों के काल का निर्देश किया गया है। स्त्री वेद जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय बतलाने का कारण यह है कि जो स्त्रीवेद जीव उपशम श्रेणी पर आरोहण करने के बाद उतरते समय एक समय के लिए स्त्रीवेद होकर मरण कर देह हो जाता है, उसके यह जघन्य काल एक समय पाया जाता है। पुरुषवेदी के यह काल घटित नहीं होता, क्योंकि पुरुषवेदी मरकर देवों में उत्पन्न होने पर पुरुषवेदी ही रहता है। इसलिए पुरुषवेदी जीव के उक्त दोनों पदों का जघन्य काल अंतर्मूर्त करते समय उपशम श्रेणी से उतार कर पुरुषवेद के उदय से संपन्न करे और अंतर्मूर्त काल के भीतर द्वितीय बार उपशम श्रेणी पर आरोहण करा के अपगत अवस्था में ले जाए, है ना? यही हमने सोचा था ना बीच में। इस प्रकार पुरुषवेदी जीव के एक जीव की अपेक्षा उक्त दोनों पदों का जघन्य काल अंतर्मूर्त प्राप्त हो जाता है। अने पर्याप्तों का एक भव से भी ये छोटा काल है। एक जीव की अपेक्षा तपकर्म का जघन्य काल एक समय दोनों वेद वाले जीवों को उपशम श्रेणी से उतार कर और एक समय के लिए सवेदी बनाकर बाद में मरण करा के घटित करना चाहिए। जो स्त्रीवेद जीव उपशम श्रेणी से उतर कर और एक समय के लिए अप्रमत्त होकर मरण कर देव होता है, उसके एक जीव की अपेक्षा क्रियाकर्म का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो पुरुषवेदी जीव उपशम श्रेणी से उतरकर और अंतर्मूर्त काल के लिए अप्रमत्त होकर पुनः उपशम श्रेणी पर आरोहण करता है, उसके क्रियाकर्म का जघन्य काल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। क्षपक पे नहीं चढ़ाए, उपशम पर ही चढ़ाए दोबारा। तथा नपुसक वेद वाले जीवों के जघन्य काल एक समय यथासंभव स्त्रीवेद वाले जीवों के समान घटित कर लेना चाहिए। अपगत वेद वाले जीवों के संभव सब पदों का एक जीव की अपेक्षा एक समय प्रमाण जघन्य काल एक समय तक अपगत वेदी रखकर बाद में मरण कराने से प्राप्त होता है। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा सब पदों का जघन्य काल एक समय कहां किस प्रकार घटित होता है, इसका विचार किया शेष कथन सुगम है। अब यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो गुरु। अश्विन भाई।
नमो यजतानं नमो सिद्धानं नमो आयनं नमो वचनं नमो लोहे तपस्वामी। Number